कक्षा की छत पर लगा पुराना लोहे का पंखा चरमराहट के साथ घूम रहा था। हर चक्कर के साथ उसकी आवाज़ जैसे कमरे की खामोशी को काटती हुई निकलती, चिर चिर चिर। हवा चल रही थी पर उसमें ठंडक नहीं थी, वह भारी थी, अजीब तरह से बोझिल, जैसे कमरे में सिर्फ गर्मी ही नहीं कोई अनकहा डर भी तैर रहा हो। खिड़कियों से आती धूप सीधे अंदर नहीं पहुंच पाती थी। स्कूल की इमारत के चारों ओर खड़े ऊंचे सुरक्षात्मक अवरोध सूर्य की किरणों को टुकड़ों में तोड़ देते थे। वही टूटी हुई रोशनी फर्श पर बिखरती, फिर धीरे धीरे दीवारों पर बने प्राचीन मंत्रों की आकृतियों से टकराकर हल्की नीली चमक में बदल जाती। वे मंत्र केवल सजावट नहीं थे, वे सुरक्षा थे, याद दिलाने के लिए कि ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। लकड़ी की पुरानी बेंचों पर बैठे विद्यार्थी असामान्य रूप से शांत थे। ये परीक्षा से पहले वाली शांति नहीं थी, नहीं अध्यापक के डर की, यह उस पीढ़ी की खामोशी थी जो बचपन से सुनती आई थी कि सुरक्षित दीवारों के बाहर कुछ ऐसा है जिसे समझना भी खतरनाक है। किसी ने धीरे से खांसा, किसी ने पानी की बोतल खोली। प्लास्टिक की हल्की सी आवाज़ कमरे में गूंजी और तुरंत दब भी गई, जैसे आवाज़ करने वाला खुद डर गया हो। ब्लैकबोर्ड के सामने खड़ी शारदा मैम ने किताब बंद कर दी। उन्होंने आखिरी पंक्ति पढ़ी नहीं थी, बस रुक गई थी। उनकी उंगलियां किताब के किनारों को कुछ ज्यादा कसकर पकड़े हुए थीं। चेहरे पर सामान्य सख्ती थी पर आंखें बेचैन थीं। वे एक एक विद्यार्थी के चेहरे पर घूम रही थीं, जैसे किसी ऐसे क्षण का इंतजार कर रही हों जिसे टाला नहीं जा सकता। कक्षा के पिछले कोने में बैठा एक लड़का बाकी सबसे अलग था। वो खिड़की की ओर नहीं देख रहा था, उसकी नज़र दरवाजे पर टिकी हुई थी। कुर्सी हल्की तिरछी, मानो किसी भी पल उठकर बाहर निकलने को तैयार हो। पीठ सीधी, हथेलियां मेज पर टिके हुए, उंगलियां ढीली पर सतर्क। उसकी आंखें शांत थीं पर स्थिर नहीं, वे हर हरकत पकड़ रही थीं। वह था अनुराग। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी नज़रों में एक आदत थी, हमेशा चौकन्ना रहने की, जैसे दुनिया ने उसे बहुत पहले सिखा दिया हो कि लापरवाही की कीमत जान से चुकानी पड़ सकती है। घंटी बजने में अभी 2 मिनट बाकी थे। सेकंड वाली सुई टिक 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 आगे बढ़ रही थी। समय जैसे खुद को गिन रहा हो, तभी आगे की बेंच से एक लड़का हिचकते हुए बोला, मैम आज का टेस्ट। शारदा मैम ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। टेस्ट नहीं होगा, आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें ऐसा भार था कि पूरी कक्षा और सीधी बैठ गई। कुछ बच्चों ने एक दूसरे को देखा, किसी ने फुसफुसाया। सच में, शारदा मैम ने गहरी सांस ली, फिर बोली, आज तुम्हारा इस स्कूल में आखिरी दिन है। एक पल के लिए शब्द हवा में ही ठहर गए, फिर जैसे कमरे की छत अचानक भारी हो गई हो। क्या मतलब, पीछे से आवाज़ आई, मैम मजाक कर रही है क्या? उन्होंने सिर हिलाया, चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, मैं मजाक नहीं कर रही। अब उनकी आवाज़ और भी स्थिर थी, आज इस स्कूल का आखिरी दिन है। खामोशी इतनी गहरी कि पंखे की चरमराहट अब और तेज लगने लगी। कुछ बच्चों के चेहरों पर उलझन थी, कुछ पर डर, और कुछ ऐसे भी थे जो इस घोषणा का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे। शारदा मैम ने धीरे धीरे किताब मेज पर रख दी, फिर बोली, तुम सबका जन्म घोर कलयुग में हुआ है, शायद तुमने इसे सामान्य मान लिया हो, लेकिन ये दुनिया कभी ऐसी नहीं थी। कक्षा में कोई हिला तक नहीं। हमारे पूर्वजों ने भविष्यवाणी की थी, उन्होंने आगे कहा कि एक समय आएगा जब अंधकार केवल रात तक सीमित नहीं रहेगा, जब इंसानों की दुनिया पर ऐसी शक्तियों की नज़र पड़ेगी जो न दया जानती हैं न नियम। कुछ बच्चों ने अनजाने में अपनी गर्दन से कोड़ ली, तुम में से कई ने कुछ अजीब देखा होगा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, या कम से कम सुना तो होगा, पर तुमने कभी सोचा है कि हम इन मंत्रों से बनी संरचनाओं के भीतर क्यों रहते हैं? उन्होंने दीवारों की ओर इशारा किया, नीली आकृतियां हल्की चमक उठी, क्योंकि इनके बाहर उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई, अंधकार का राज है। किसी की सांस अटक गई, शैतानी शक्तियां, भटकी हुई आत्माएं और वे प्राणी जिन्हें समझना भी मुश्किल है, सुरक्षित शहर जिन्हें मंत्र कवच क्षेत्र कहा जाता है, इन्हीं संरचनाओं के कारण अब तक बचे हुए हैं। इनके बिना मानव सभ्यता कब की समाप्त हो चुकी होती। अब डर केवल हवा में नहीं था, वह चेहरों पर उतर आया था। अनुराग अब भी दरवाजे की ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई बदल गई थी, जैसे ये बातें उसके लिए नई नहीं थीं। शारदा मैम ने स्वर थोड़ा दृढ़ किया, आज तुम सबने 12वीं उत्तीर्ण कर ली है, तुम्हें मार्कशीट मिलेगी, प्रवेश परीक्षाएं होंगी और तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। वे एक पल को रुकी, लेकिन तुम सबके सामने एक और रास्ता रखा जा रहा है। कक्षा में हलचल हुई, रक्षक अकादमी नाम सुनते ही कई विद्यार्थियों की भौहें सिकुड़ गईं। कुछ की आंखें चमक उठीं, ये केवल एक कोर्स नहीं है, उन्होंने कहा, यह उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया की रक्षा करने का साहस रखते हैं। एक लड़का खड़ा हो गया, मैम इसमें करना क्या होगा? शारदा मैम ने सीधे उसकी आंखों में देखा, ताकत हासिल करनी होगी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। पुराने समय में जिन्हें पैरानॉर्मल गतिविधियां कहा जाता था, आज वही हमारी ढाल हैं। कुछ लोग आग को नियंत्रित कर सकते हैं, कुछ हवा को, कुछ ऐसी चीजें देख सकते हैं जिन्हें सामान्य आंखें नहीं देख पाती। एक लड़की के हाथ से पेन गिर गया, आवाज असामान्य रूप से तेज लगी। इन शक्तियों को पाने का एक ही तरीका है, शारदा मैम बोली, आत्मा के साथ अनुबंध। अब कई चेहरों पर साफ डर था, हर कोई इसके योग्य नहीं होता, प्रशिक्षण कठिन होता है और प्रवेश परीक्षाएं खतरनाक, इतना कि कभी कभी जान भी जा सकती है। किसी ने घूंट भरा, लेकिन उसी क्षण कुछ चेहरों पर एक अजीब चमक भी थी, डर और आकर्षण दोनों साथ। सरकार ने वर्षों तक इन सबको गुप्त रखा, उन्होंने कहा, ताकि समाज में भय न फैले, पर अब नई पीढ़ी को तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने मेज से एक फाइल उठाई, तुम सबको एक फॉर्म दिया जाएगा, यदि तुम योग्य पाए गए तो तुम्हें रक्षक अकादमी में प्रशिक्षण मिलेगा। एक लड़के ने धीरे से पूछा, सैलरी मिलती है क्या? कक्षा में हल्की हंसी फैलती फैलती रुक गई। शारदा मैम ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, बहुत ऊंची, इतनी कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर उनका चेहरा फिर गंभीर हो गया, पर याद रखना, ये धन के लिए नहीं, अस्तित्व के लिए है। फॉर्म बांटे जाने लगे, कागजों की सरसराहट कमरे में गूंज उठी। घंटी बज गई, पर आज कोई अपनी सीट से उछलकर बाहर नहीं भागा। हर विद्यार्थी उस सफेद कागज को देख रहा था जैसे वह एक साधारण फॉर्म नहीं बल्कि भाग्य का निमंत्रण हो। घर जाकर अपने माता पिता से बात करना, शारदा मैम ने कहा, उनके हस्ताक्षर और वीडियो सहमति अनिवार्य है। वे रुकी, क्योंकि यह रास्ता जीवन बदल देता है। एक एक कर विद्यार्थी बाहर निकलने लगे, फुसफुसाहटें, घबराहट, उत्साह, सब मिलकर गलियारे में बह गए। लेकिन पीछे की बेंच पर बैठा अनुराग नहीं हिला, वो फॉर्म को देख रहा था। उसकी उंगलियां कागज पर स्थिर थीं और उसकी आंखों में सालों बाद एक बुझी हुई चिंगारी फिर से जल उठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अतीत की राख के नीचे दबा कोई संकल्प धीरे धीरे सांस लेने लगा हो। शारदा मैम दरवाजे तक पहुंची, फिर अचानक रुकी, उनकी नज़र अनुराग पर पड़ी। वो बिल्कुल निश्चल बैठा था, जैसे शरीर यहां हो पर आत्मा कहीं और। वे उसके पास आए। अनुराग, उन्होंने नर्म स्वर में कहा, घर नहीं जाना? वो चौंका, जैसे गहरे पानी से अचानक ऊपर आया हो। मैम, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो, उसने एक पल झिझक कर कहा, अगर किसी के माता पिता ना हो तो फॉर्म पर साइन कौन करेगा? शारदा मैम के चेहरे का रंग हल्का बदल गया, कुछ सेकंड तक वे उसे देखती रहीं। फिर धीरे से बोली, मैं प्रिंसिपल से बात करूंगी, अंतिम निर्णय वही लेंगे, पर तुम्हारे लिए कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अनुराग ने सिर हिलाया, वे मुड़ी और बाहर चली गईं। कक्षा का दरवाजा धीरे से बंद हो गया और उसी क्षण अनुराग को लगा, शायद उसकी जिंदगी का एक नया दरवाजा खुलने वाला है। अंधस्को अनुराग कुछ क्षण तक उसी खाली कक्षा में बैठा रहा। दरवाजा बंद हो चुका था, गलियारे की आवाजें दूर जा चुकी थी और पंखे की चरमराहट अब पहले से भी ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। मेज पर रखा सफेद फॉर्म हल्की हवा से कांप रहा था, जैसे उसे छूकर पूछ रहा हो, क्या तुम सच में ये रास्ता चुनोगे? अनुराग ने धीरे से उसे उठाया। कागज साधारण था, पर उसके भीतर लिखा भविष्य साधारण नहीं था। उसकी नजर अभिभावक के हस्ताक्षर वाली जगह पर टिक गई, खाली, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह। उसके होंठों पर एक बहुत हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान आई, वो मुस्कान जो दर्द से जन्म लेती है। कुछ लोग अकेले रहना चुनते हैं, कुछ को अकेला छोड़ दिया जाता है। अनुराग दूसरी श्रेणी में था, वो ऐसा लड़का नहीं था जो हमेशा से चुप रहा हो। कभी उसकी हंसी बहुत ऊंची हुआ करती थी, इतनी कि उसकी माँ रसोई से आवाज लगा दी, अनुराग, घर है या मेला? और उसके पिता हंसते हुए कहते, रहने दो, घर में आवाज रहेगी तभी तो घर लगेगा। वह समय अब किसी और जन्म जैसा लगता था। उसके माता पिता साधारण लोग नहीं थे, वे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, उन लोगों में से जो सुरक्षित शहरों की सीमाओं से बाहर जाते थे, वहां जहां सामान्य इंसान कदम रखने की कल्पना भी नहीं कर सकता। बचपन में अनुराग को यह सब किसी कहानी जैसा लगता था। उसके पिता कभी कभी नक्शे फैलाकर बैठते जिन पर लाल निशान बने होते। उसकी माँ देर रात लौटती, थकी हुई, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक के साथ। वो पूछता, आप लोग करते क्या हो? पिता मुस्कुराकर कहते, राक्षसों को सोने नहीं देते, और वो खिलखिलाकर हंस पड़ता। उसे लगता यह मजाक है, पर एक दिन मजाक खत्म हो गया। उस रात आसमान असामान्य रूप से लाल था, बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी हवा में नमी थी, घर के बाहर खड़े सुरक्षात्मक स्तंभ हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। अनुराग को बस इतना याद है कि उसकी माँ ने उसे जरूरत से ज्यादा देर तक गले लगाया था, इतना कसकर, जैसे छोड़ना नहीं चाहती हो, जल्दी लौट आना, उसने कहा था। उसकी माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान पूरी नहीं हुई। उसके पिता ने उसके बाल उलझाए, मर्द बनना है, ठीक है? मैं तो हूं ही, उसने गर्व से कहा था। दोनों हंसे थे। फिर दरवाजा बंद हुआ और वह आवाज, वह आखिरी आवाज थी। वे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पर गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। शुरुआत में किसी ने मृत शब्द नहीं कहा, लोग बस कहते। मिशन कठिन था, टीम से संपर्क टूट गया, खोज जारी है। लेकिन घर के भीतर सन्नाटा बढ़ता गया। उसके दादा हर शाम दरवाजे के पास बैठ जाते, दादी मंदिर के सामने दीपक जलाकर घंटों प्रार्थना करती। अनुराग को पूरी बात समझ नहीं आती थी, वो दरवाजे की ओर देखता और सोचता, अभी खुल जाएगा। अभी माँ आएंगी, अभी पिता आवाज देंगे, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और एक दिन घर से हंसी की आखिरी गूंज भी चली गई। दादा का दिल टूट गया था। बाहर से वे मजबूत बने रहे, पर अंदर कुछ चटक चुका था। एक सुबह वे उठे ही नहीं, डॉक्टर ने कहा हार्ट फेलियर। पर सच ये था, दिल पहले ही हार चुका था। दादी ने उस दिन पहली बार जोर से रोया था, इतना कि अनुराग डर गया था। उसे लगा अगर रोना एक आवाज होता तो वह पूरे शहर में सुनाई देता। लेकिन दुख यही नहीं रुका। कुछ ही महीनों में दादी की आंखों की चमक बुझने लगी। वे कम बोलती, कम खाती और एक रात बिना किसी शोर के सोते सोते चली गईं। घर अब सचमुच घर नहीं रहा था, वो एक ढांचा था जिसमें एक आठवीं कक्षा का लड़का अकेला खड़ा था। उस दिन के बाद अनुराग बदल गया बहुत तेजी से। बचपन कभी कभी अचानक खत्म हो जाता है, उसके साथ भी यही हुआ। जो लड़का हर बात पर दोस्तों से घिरा रहता था, वही अब कोने में बैठने लगा। पहले लोग उसके पास आते, उसे हंसाने की कोशिश करते, बातें करते, स्कूल के बाद घुमाने ले जाना चाहते, वो बस सिर हिला देता। धीरे धीरे लोगों ने कोशिश करना बंद कर दिया। खामोशी भी एक दीवार होती है, और अनुराग ने वो दीवार खुद के चारों ओर खड़ी कर ली थी। जब उसने 11वीं में स्कूल बदला, पुराने दोस्तों से उसका आखिरी धागा भी टूट गया। नए स्कूल में वो सिर्फ एक नाम था, न कोई इतिहास, न कोई कहानी, न कोई अपना। अकेलापन इंसान को दो चीजें सिखाता है, या तो टूट जाना या चौकन्ना रहना। अनुराग ने दूसरा रास्ता चुना। वो हर जगह दरवाजे के पास बैठता, पीठ कभी खुली जगह की ओर नहीं करता। रात को हल्की आवाज पर भी जाग जाता, भीड़ में भी उसकी नजरें रास्ते खोजती रहती। लोगों को यह आदत लगती थी, उसे यह जरूरत लगती थी, क्योंकि उसने बहुत जल्दी समझ लिया था, सुरक्षा कोई भावना नहीं, एक कौशल है। फिर भी उसके भीतर कहीं एक सपना दबा हुआ था, बहुत पुराना। वह भी अपने माता पिता की तरह पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनना चाहता था। बचपन में वह झाड़ू को तलवार बनाकर घूमता था, आईने के सामने खड़ा होकर कल्पना करता वह किसी अंधेरे प्राणी से लड़ रहा है। लेकिन उनके गायब होने के बाद उसने वह सपना दफना दिया। उसे लगा ये रास्ता सिर्फ छीनता है, देता कुछ नहीं। पर आज शारदा मैम के शब्दों ने उस दबी हुई कब्र में दर डाल दी थी। रक्षक अकादमी, आत्मा से अनुबंध, ताकत और अचानक एक और याद उभरी, बहुत धुंधली पर जिंदा। उसे याद था जब वह छोटा था, घर में आए एक एक्सपर्ट ने धीमी आवाज में कहा था, जिसने हमला किया वह मारता नहीं है, वह आत्मा निकाल लेता है और उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। तब वो अर्थ नहीं समझ पाया था, अब समझता था, और यह सोच उसके भीतर बर्फ की तरह उतर गई। अगर उसके माता पिता मरे नहीं हैं, अगर वे कहीं कैद हैं, उसकी उंगलियां फॉर्म पर कस गईं। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं था, कुछ और था, संकल्प, धीमा पर खतरनाक। उसने मन ही मन कहा अगर इस दुनिया में इतनी ताकत मौजूद है तो मैं उसे हासिल करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। पंखा अब भी चरमरा रहा था, पर इस बार अनुराग के भीतर कुछ जाग चुका था। और एक बार जब सोया हुआ इरादा जाग जाए तो जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। अंडरस्कोप, कक्षा से बाहर निकलते समय अनुराग को ऐसा लगा जैसे उसके कदम अपने आप चल रहे हों। गलियारे में छात्रों की आवाजें गूंज रही थी, कहीं उत्साह, कहीं डर, कहीं अविश्वास। कोई रक्षक कोर्स की सैलरी के बारे में बात कर रहा था, कोई प्रवेश परीक्षा के खतरों के बारे में। पर ये सारी आवाजें अनुराग तक पहुंचकर जैसे फीकी पड़ जाती थीं। उसके कान सुन रहे थे, पर उसका मन कहीं और था। उसकी उंगलियां अब भी उस फॉर्म को पकड़े हुए थीं। कागज थोड़ा मुड़ गया था, पर उसने ध्यान नहीं दिया। गार्जियन के हस्ताक्षर, ये दो शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। जब बाकी छात्र सीढ़ियों की ओर भागे, अनुराग धीमे कदमों से स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गया। दरवाजा आधा खुला था, अंदर कुछ अध्यापक धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे। पर जैसे ही उसने दस्तक दी, सबकी नजरें एक पल के लिए उसकी ओर उठी। हाँ, शारदा मैम ने उसे पहचानते हुए कहा, मैम आपने कहा था प्रिंसिपल से बात करेंगी। उनके चेहरे पर तुरंत समझ की झलक आई। ओह हाँ, आओ। स्टाफ रूम के पीछे एक छोटा सा कॉरिडोर था जिसके अंत में प्रिंसिपल का कार्यालय था। वहां हमेशा हल्की चंदन की खुशबू रहती थी, शायद अगरबत्ती की। दरवाजे पर पीतल की पट्टिका चमक रही थी। अनुराग ने अनजाने में अपनी शर्ट सीधी की। दिल सामान्य से थोड़ा तेज धड़क रहा था। शारदा मैम ने दरवाजा खटखटाया। आइए, अंदर से गंभीर आवाज आई। कमरा व्यवस्थित था, जितना व्यवस्थित कोई ऐसा व्यक्ति रख सकता है जो अव्यवस्था को पसंद नहीं करता। फाइलें एक सीध में सजी थीं, खिड़की के पास एक पौधा रखा था और दीवार पर सुरक्षित शहर का बड़ा नक्शा टंगा था जिस पर कई क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से चिन्हित किया गया था। प्रिंसिपल ने चश्मे के ऊपर से देखते हुए पूछा, हाँ शारदा जी। सर, यह अनुराग है, 12वीं का छात्र, एक समस्या है। समस्या? उन्होंने भौं उठाई। शारदा मैम ने धीरे से कहा, इसके माता पिता नहीं है और कोई आधिकारिक अभिभावक भी नहीं। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल की नजरें अब सीधे अनुराग पर थीं, तेज पर परखने वाली। तुम रक्षक अकादमी के लिए आवेदन करना चाहते हो? उन्होंने पूछा। जी, उत्तर छोटा था पर बिना हिचकिचाहट के। तुम्हें पता है इसमें जोखिम है?
जी, जान भी जा सकती है। अनुराग ने एक पल को उनकी आंखों में देखा।
जी, प्रिंसिपल कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिक गए। उनकी उंगलियां मेज पर हल्के हल्के थपथपा रही थीं, जैसे वे केवल शब्द नहीं लड़के के इरादे का वजन भी तौल रहे हों।
क्यों करना चाहते हो ये? उन्होंने अचानक पूछा। ये प्रश्न सरल था
पर उत्तर नहीं। अनुराग चुप रहा। क्या वह कह दे कि वह ताकत चाहता है,
कि वह डरना बंद करना चाहता है, या कि वह किसी को वापस लाना चाहता है?
उसने धीरे से कहा, क्योंकि मेरे माता पिता भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे।
प्रिंसिपल की आंखों में एक हल्की चमक उभरी। शारदा मैम ने पहली बार अनुराग को उस तरह देखा जैसे वे उसे नए सिरे से समझ रही हों।
हम, प्रिंसिपल ने फाइल बंद करते हुए कहा, कानून कहता है कि नाबालिग या आश्रित छात्रों के लिए अभिभावक की सहमति आवश्यक है, पर कुछ अपवाद भी होते हैं।
अनुराग की सांस अनजाने में थम गई। तुम्हारे माता पिता एक्सपर्ट थे, सही?
वो चौंका। जी, रिकॉर्ड में है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, बहुत सक्षम एजेंट थे।
एक क्षण को अनुराग का सीना अजीब तरह से भारी हो गया, गर्व और दर्द दोनों साथ।
प्रिंसिपल आगे झुके। ऐसे मामलों में संस्थान एक अस्थायी अभिभावक नियुक्त कर सकता है यदि छात्र की मानसिक और भावनात्मक स्थिति स्थिर हो।
उन्होंने सीधे पूछा, क्या तुम खुद को स्थिर मानते हो?
ये सुनकर अनुराग के भीतर कुछ हल्का सा हिला। स्थिर? क्या कोई सचमुच स्थिर होता है जब उसने सब खो दिया हो?
पर उसकी आवाज नहीं कांपी। जी, कुछ सेकंड तक केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही।
फिर प्रिंसिपल ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अकादमी को विशेष अनुशंसा भेज दूंगा। अंतिम निर्णय उनका होगा, पर मुझे नहीं लगता वे मना करेंगे।
शारदा मैम के चेहरे पर राहत की झलक आई। थैंक यू सर,
अनुराग ने धीरे से कहा। धन्यवाद।
मुझे धन्यवाद मत दो, प्रिंसिपल बोले। ये रास्ता आसान नहीं है। आज तुम जो मान रहे हो, कल वही तुम्हारी परीक्षा लेगा।
अनुराग ने बस सिर झुका दिया। जा सकते हो, उन्होंने कहा।
दरवाजा बंद होते ही अनुराग ने महसूस किया कि उसकी मुट्ठी कस गई थी, जैसे वह खुद को रोक रहा हो किसी अनजाने भाव से। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्कूल के गेट से बाहर निकलते समय आसमान हल्का धुंधला था। सुरक्षात्मक ढाल की पारदर्शी परत सूरज की रोशनी को अजीब सा बना देती थी, न पूरी चमक न पूरी छाया।
सड़क पर भीड़ थी, जीवन सामान्य दिख रहा था, पर अब उसे सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। रक्षक अकादमी, ये केवल एक संस्थान नहीं था, ये सीमा थी। साधारण और असाधारण के बीच वो कुछ कदम चला, फिर अचानक रुक गया। एक विचार बिजली की तरह उसके मन में कौंधा था। अगर वो इस रास्ते पर गया तो शायद लौटना संभव नहीं होगा। डर ने एक पल को उसके सीने को जकड़ लिया। पर उसी क्षण एक और छवि उभरी, उसकी माँ की अधूरी मुस्कान, उसके पिता का बिखरा हुआ हाथ और वह वाक्य, वह मारता नहीं, आत्मा को गुलाम बना लेता है। डर पिघल गया, उसकी जगह कुछ और भरने लगा, ठंडा, स्थिर, खतरनाक। अनुराग ने पहली बार साफ महसूस किया, यह सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह उसका रास्ता है, शायद उसका युद्ध भी। उसने फॉर्म को बैग में रखा और मन ही मन कहा, मैं भागना बंद कर चुका हूं, अब अगर अंधेरा सामने आया तो मैं उसकी तरफ चलूंगा।
अंडस्को सड़क पार करते हुए अनुराग ने एक बार पीछे मुड़कर स्कूल की इमारत को देखा। ऊंची दीवारें, उन पर उकेरे गए मंत्र और उनके ऊपर फैली हल्की चमकती सुरक्षा परत। यह वही जगह थी जहां उसने पिछले 2 साल बिताए थे, पर आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह इमारत केवल पढ़ाई की जगह नहीं थी, यह एक शरण स्थली थी और शायद अब वो इस शरण को छोड़ने वाला था।
उसने नजरें हटा ली और घर की दिशा में चल पड़ा। उसका फ्लैट शहर के पुराने हिस्से में था, जहां इमारतें नई सुरक्षा तकनीकों से तो घिरी थीं, पर उनकी दीवारों पर समय के निशान अब भी साफ दिखते थे। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम की आवाज गूंजती थी, पहले ये गूंज उसे सामान्य लगती थी। अब खाली जेब से चाबी निकालते हुए वह कुछ क्षण दरवाजे के सामने खड़ा रहा, एक आदत, जैसे भीतर जाने से पहले खुद को तैयार कर रहा हो। ताला खुला, दरवाजा हल्की चरमराहट के साथ अंदर की ओर धकेला और वही परिचित सन्नाटा उसका स्वागत करने लगा। घर में हमेशा एक खास तरह की गंध रहती थी, बंद कमरों, पुरानी लकड़ी और बीते समय की। उसने बैग सोफे पर रखा। कमरे में कोई हलचल नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई। आ गए, हाथ धो लो, आज स्कूल कैसा था?
कुछ भी नहीं, सिर्फ खामोशी।
वह कुछ कदम अंदर बढ़ा, फिर अनजाने में उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर जा टिकी। तीन लोग, उसके माता पिता और उनके बीच खड़ा एक छोटा सा लड़का जिसकी मुस्कान इतनी बड़ी थी कि आंखें आधी बंद हो गई थीं। अनुराग, उसके होंठ अनायास हिले पर आवाज नहीं निकली। उसे याद आया, उस दिन उसके पिता ने उसे अपने कंधों पर बैठा लिया था और उसकी माँ बार बार कह रही थी, गिरा दोगे उसे, मैं, कभी नहीं। पिता हंसे थे, याद खत्म हुई। कमरा फिर वही बन गया, शांत, स्थिर, खाली। अनुराग ने नजरें फेर ली, पर यादें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती।
वह रसोई के पास से गुजरा, एक पल को उसे भ्रम हुआ कि कोई उसके पीछे दौड़ते हुए कहेगा,
रुको, गर्म है। उसकी माँ को आदत थी, जब भी वो स्कूल से आता प्लेट हाथ में लेकर उसके पीछे पीछे घूमती, पहले खा लो फिर जो करना है करना, और वह हर बार भागता। माँ भूख नहीं है, आज भूख थी या नहीं ये पूछने वाला कोई नहीं था। उसने फ्रिज खोला, अंदर बस जरूरी सामान था, दूध, कुछ सब्जियां, पानी की बोतल। जीने भर का, रहने भर का, महसूस करने भर का नहीं। फ्रिज बंद करते ही उसकी नजर फर्श के उस कोने पर गई जहां लकड़ी थोड़ी घिसी हुई थी, वह जगह जहां उसके पिता उसके साथ बैठकर छोटे छोटे खिलौना सैनिक सजाते थे। रणनीति समझो, वे कहते, सीधे हमला हमेशा जीत नहीं दिलाता। तब वह हंस देता, अब समझता था। अनुराग धीरे धीरे अपने कमरे में चला गया। बिस्तर वैसा ही सजा था जैसा सुबह छोड़कर गया था, कोई सिलवट नहीं, कोई बदलाव नहीं, जैसे समय यहां कदम ही नहीं रखता। वह बैठ गया और अचानक उसकी छाती भारी होने लगी। भावनाएं कभी चेतावनी देकर नहीं आती, वे बस टूट पड़ती हैं। उसने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया, सांसें थोड़ी तेज हो गईं, आंखें जलने लगी, पहला आंसू गिरा, फिर दूसरा, फिर वो रोक नहीं पाया। सालों से जमा हुआ खालीपन उस क्षण बाहर निकल रहा था। क्यों गए थे, उसके होंठों से टूटी हुई फुसफुसाहट निकली। मुझे छोड़कर क्यों गए, कमरे में कोई उत्तर नहीं था, पर उसने बोलना बंद नहीं किया। आपको पता है मैं अब भी इंतजार करता हूं। उसकी उंगलियां चादर में कस गईं, हर बार दरवाजा खुलता है तो एक पल को लगता है शायद आप हो। उसने सिर झुका लिया, आंसू अब चुपचाप गिर रहे थे। कुछ देर बाद रोना धीमा पड़ा, सांसें सामान्य होने लगी, और उसी शांत होते क्षण में उसके भीतर एक विचार उठा, धीमा पर साफ, अगर वे सच में मरे नहीं हैं, अगर उनकी आत्माएं कहीं कैद हैं, तो क्या वह यूं ही बैठा रह सकता है। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, आंखें अब भी लाल थीं पर उनमें एक नई कठोरता उतरने लगी थी। वो खड़ा हुआ, दीवार पर टंगी तस्वीर के सामने जाकर रुक गया, कुछ सेकंड तक बस देखता रहा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, मैं अब बच्चा नहीं हूं। कमरे की हवा स्थिर थी, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं आपको ढूंढूंगा।
उसके शब्द कांपे नहीं, वे भारी थे। जिसने भी आपको छुआ है, जिसने आपको इस हालत में पहुंचाया है।
उसकी मुठियां भिंज गईं, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। एक लंबी सांस उसके सीने से निकली, और फिर जैसे किसी अदृश्य रेखा के उस पार कदम रख दिया हो। मैं ताकतवर बनूंगा। अब उसकी आवाज पहले से धीमी थी पर अडिग, इतना ताकतवर कि इस दुनिया का कोई अंधेरा मुझे रोक न सके। कमरे में हल्की हवा चली, तस्वीर का कोना जरा सा हिला। अनुराग ने इसे सहयोग समझा, पर उसके भीतर जो बदल रहा था वो सहयोग नहीं था। उस क्षण एक शोकग्रस्त लड़का नहीं खड़ा था, वहां कोई था जिसने निर्णय ले लिया था, और निर्णय कभी कभी इंसान को उससे भी ज्यादा बदल देता है जितना दर्द बदलता है। कुछ देर बाद उसने आंखें पोंछी, रसोई में जाकर चुपचाप खाना बनाया। हर हरकत सधी हुई थी, जैसे वह खुद को व्यस्त रखकर मन को भटकने से बचाना चाहता हो। प्लेट लेकर जब वह टेबल पर बैठा, कुर्सी की दूसरी खाली जगह पर उसकी नजर टिक गई। पहले वहां उसके पिता बैठते थे, सामने माँ, आज सिर्फ एक प्लेट थी। उसने पहला कौर लिया, स्वाद महसूस नहीं हुआ, पर उसने खाना बंद नहीं किया। जीना कभी कभी आदत से चलता है, इच्छा से नहीं। खाना खत्म कर वह उठने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बज उठा। आवाज इतनी अचानक थी कि वह हल्का सा चौंक गया। स्क्रीन पर नजर पड़ी, प्रिंसिपल कॉलिंग। उसका दिल एक पल को तेज धड़का, इतनी जल्दी। उसने कॉल उठा ली, हेलो सर। दूसरी तरफ से शांत पर सीधी आवाज आई, अनुराग मुझे पता है तुम्हारे घर में तुम्हारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा, तुम आगे क्या करना चाहते हो। अनुराग ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं रक्षक अकादमी जाना चाहता हूँ सर, अपने माता पिता की तरह एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। कुछ क्षण खामोशी रही, फिर प्रिंसिपल बोले, अच्छा है, डर के साथ जीने से बेहतर है उसका सामना करना। उनकी आवाज में हल्की संतुष्टि थी, मुझे उम्मीद है एक दिन तुम भी अपना नाम बनाओगे। कॉल कट गई, कमरा फिर शांत हो गया, पर इस बार वो शांति पहले जैसी नहीं थी। अनुराग ने फोन को धीरे से मेज पर रखा और मन ही मन कहा, माँ पापा चिंता मत करना, इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। अंडस्को रात धीरे धीरे शहर पर उतर आई थी। सुरक्षात्मक कवच के पार आसमान दिखाई तो देता था, पर असली नहीं लगता था, जैसे किसी ने काले शीशे के पीछे तारों की नकली चमक टांग दी हो। शहर के भीतर रोशनी थी, जीवन था, पर उस रोशनी के बाहर क्या था ये हर कोई जानता था, और फिर भी कोई उसके बारे में खुलकर बात नहीं करता था। अनुराग अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था, नीचे सड़क पर लोग आ जा रहे थे, कुछ दुकानें बंद हो रही थीं, कहीं दूर से किसी वाहन की आवाज आई और फिर खो गई। उसने धीरे से पर्दा गिरा दिया, अंधेरा उसे हमेशा से डराता नहीं था, अनजाना डराता था। वह बिस्तर पर बैठा ही था कि उसका फोन हल्का सा कंपन करने लगा। एक संदेश, स्क्रीन जली, भेजने वाला वॉलंटियर सेल रक्षक एंट्रेंस डिवीजन। उसका दिल अनजाने में तेज धड़कने लगा। उसने संदेश खोला,
ग्रेटर देन, आपका आवेदन प्रारंभिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, कृपया संलग्न फॉर्म सत्यापित करें। नीचे एक डिजिटल फाइल जुड़ी थी, अनुराग ने तुरंत उसे खोल लिया। उसकी नजरें सीधे उस जगह गई जहां दोपहर में खालीपन था। गार्डियन सिग्नेचर, वहां अब हस्ताक्षर थे, साफ, आधिकारिक, वास्तविक। कुछ सेकंड तक वो स्क्रीन को देखता ही रह गया। उसकी सांस जैसे अटक गई। ये कैसे? उसके पास कोई अभिभावक नहीं था, न कोई रिश्तेदार, न कोई संरक्षक। तो फिर फोन अचानक बज उठा, अनजान नंबर। उसने एक पल सोचा, फिर कॉल उठा ली। हेलो? कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर एक भारी पर शांत पुरुष स्वरों भरा, अनुराग बेटा, कैसे हो? बेटा, शब्द सुनते ही वो थोड़ा चौंका। यह अपनापन अनजान लग रहा था। मैं ठीक हूं, पर माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। दूसरी तरफ से हल्की सांस की आवाज आई, जैसे व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो। पहचानोगे भी कैसे, बहुत छोटे थे तुम जब आखिरी बार देखा था। फॉर्म पर गार्जियन के हस्ताक्षर मैंने किए हैं। अनुराग की उंगलियां फोन पर कस गईं। आपने? हाँ, और अगर चाहो तो मुझे अपना गॉडफादर समझ सकते हो। उसका दिल एक बार जोर से धड़का, क्योंकि तुम्हारे पिता और मैं एक ही टीम में थे। कमरे की हवा जैसे अचानक ठंडी हो गई। अनुराग खड़ा हो गया। आप मेरे पापा को जानते थे? सिर्फ जानता नहीं था, आवाज नरम हुई। उनके साथ कई मिशन पूरे किए हैं, वे बेहतरीन एक्सपर्ट थे और उससे भी बेहतर इंसान। कुछ क्षण अनुराग बोल ही नहीं पाया। इतने सालों में पहली बार कोई उनसे इस तरह बात कर रहा था, जैसे उसके माता पिता सिर्फ एक याद नहीं, वास्तविक लोग थे। मुझे पता है उनके साथ क्या हुआ, वह आदमी आगे बोला, और यह भी जानता हूं कि तुम्हारे लिए आगे बढ़ना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है बेटा। अनुराग ने धीरे से पूछा, आप हैं कौन? नाम है मितेश। एक छोटा सा विराम, 3 स्टार पैरानॉर्मल एक्सपर्ट।
अनुराग की आंखें अनायास फैल गईं। 3 स्टार, यह कोई साधारण स्तर नहीं था।
मैं अभी ज्यादा फोन पर नहीं कहूंगा, मितेश ने कहा। तुम्हारे घर के सामने जो पुरानी कैंटीन है, रामू काका वाली, वहां आ सकते हो, मैं इंतजार कर रहा हूं। अनुराग ने घड़ी देखी, रात ज्यादा नहीं हुई थी। उसने बिना झिझक कहा, मैं आता हूं। कैंटीन तक का रास्ता छोटा था, पर आज उसे थोड़ा लंबा लगा। पीली रोशनी के नीचे रखी प्लास्टिक की मेजें, उबलती चाय की भाप और तेल में तली जा रही किसी चीज की खुशबू, सब कुछ सामान्य था। अजीब तरह से सामान्य, जैसे दुनिया के इस छोटे से कोने में खतरे का कोई अस्तित्व ही न हो। अनुराग ने अंदर कदम रखा और नजरें घुमाई। एक कोने की मेज पर बैठा व्यक्ति उसे देखते ही हल्का सा हाथ उठाकर इशारा करने लगा। अनुराग वहीं चला गया। मितेश करीब 40-45 के होंगे, चौड़े कंधे, सधा हुआ शरीर और आंखें बहुत सतर्क,
ऐसी आंखें जो आदतन हर प्रवेश और हर निकास को नोटिस करती हों।
बैठो, उन्होंने कहा। अनुराग कुर्सी पर बैठ गया। कुछ सेकंड तक वो बस उन्हें देखता रहा। यह वही दुनिया थी जिससे उसके माता पिता जुड़े थे। घबराए हुए लग रहे हो, मितेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं, बस सोच रहा हूं। अच्छा है, जो सोचता है वही ज्यादा देर तक जिंदा रहता है। रामू काका चाय रख गए। मितेश ने बिना पूछे एक कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हें शायद बहुत कुछ जानना है, उन्होंने कहा। अनुराग ने सिर हिलाया। सबसे पहले ये समझ लो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होना कोई पद नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है और अक्सर एक अभिशाप भी। उन्होंने चाय का घूंट लिया। हमारी दुनिया लेवल्स में बंटी है, आधिकारिक तौर पर 1 से 10 तक, 1 से 5 सामान्य ऑपरेशनल स्तर, खतरनाक पर संभालने लायक। उनकी आवाज थोड़ी धीमी हुई। 5 के ऊपर जानकारी सीमित हो जाती है, क्योंकि वहां जिन चीजों का सामना होता है वे शहर नहीं देशों को मिटा सकती हैं। अनुराग ध्यान से सुन रहा था, हर शब्द उसके भीतर उतर रहा था। तुम्हारे माता पिता, मितेश बोले, मेरे बराबरी के स्तर पर थे, मजबूत, तेज और निर्णय लेने में बेहतरीन। अनुराग का गला थोड़ा सूख गया, फिर भी उसने धीमे से कहा। मितेश ने उसकी बात पूरी की, फिर भी वे हार गए। सच कभी कभी बहुत सीधे कहा जाता है और उतना ही गहरा चुभता है। कुछ क्षण दोनों चुप रहे, फिर अनुराग ने वो प्रश्न पूछ ही लिया जो वर्षों से उसके भीतर जिंदा था। जिस मॉन्स्टर ने हमला किया वह आत्मा को गुलाम बना लेता है, क्या अगर उसे हरा दिया जाए तो मेरे माता पिता? रुको, मितेश की आवाज कठोर नहीं थी पर अंतिम थी। उन्होंने सीधे उसकी आंखों में देखा। कभी कभी अपनी ताकत से बड़े दुश्मन चुनना बहादुरी नहीं, मूर्खता होती है। अनुराग की मुठियां कस गईं, पर इसका मतलब यह नहीं कि उम्मीद नहीं होती, मितेश ने थोड़ा नर्म होकर कहा। बस उस उम्मीद तक पहुंचने में इंसान अक्सर खुद को खो देता है। उसी क्षण उनका फोन कंपन किया। उन्होंने स्क्रीन देखी। उनके चेहरे का भाव एक पल को बदला, बहुत हल्का, पर अनुराग ने नोटिस कर लिया। उन्होंने फोन जेब में रख लिया। सुनो, मितेश फिर बोले, इतने सालों में क्या तुम्हें लगता है कि किसी ने कोशिश नहीं की होगी? रक्षक अकादमी अपने लोगों को यूं ही नहीं छोड़ती। ये सुनकर अनुराग के भीतर कुछ हिला, तो वे पूरी तरह भूले नहीं गए थे। अगर तुम चुने जाते हो, मितेश आगे झुके, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा जितना कर सकता हूं। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह स्पर्श भारी था, जैसे किसी अनुभवी योद्धा का आश्वासन। पर एक बात याद रखना, इस रास्ते पर कदम रखने के बाद वापस मुड़ना मुश्किल होता है। अनुराग ने बिना नजर हटाए कहा, मैं मुड़ना नहीं चाहता। कुछ सेकंड तक मितेश उसे देखते रहे, फिर बहुत हल्का सा मुस्कुराए। तुम्हारे पिता भी ऐसे ही बोलते थे। ये सुनते ही अनुराग के भीतर कुछ गर्म सा फैल गया, गर्व या शायद विरासत का एहसास। मितेश उठ खड़े हुए। अब मुझे जाना होगा, बुलावा आ गया है, उन्होंने बिल मेज पर रखा। फिर जाते जाते उसकी पीठ थपथपाई, तैयार रहना अनुराग, जिंदगी अब तुम्हें साधारण रहने नहीं देगी। और वे भीड़ में खो गए। अनुराग कुछ देर वहीं बैठा रहा। चाय ठंडी हो चुकी थी, पर उसके भीतर कुछ जाग चुका था। डर अब भी था, पर उसके साथ एक अजीब सा उत्साह भी, जैसे वह किसी बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़ा हो, जिसके पीछे खतरा भी है और उत्तर भी। रात और गहरी हो गई थी जब वह वापस अपने फ्लैट में पहुंचा। बिस्तर पर लेटते ही दिन भर की बातें उसके मन में घूमने लगी। शारदा मैम, प्रिंसिपल, फॉर्म, मितेश और उसके माता पिता। क्या मैं सच में तैयार हूं, उसने खुद से पूछा। कोई उत्तर नहीं आया, पर इस बार उसे उत्तर की जरूरत भी नहीं थी। पलकें भारी होने लगी और सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि कब नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। आने वाला सवेरा उसकी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला था। अंधस्को सुबह अभी पूरी तरह हुई भी नहीं थी। आसमान गहरे नीले से हल्का हो रहा था, जैसे रात धीरे धीरे अपनी चादर समेट रही हो। दूर कहीं किसी पक्षी की पहली आवाज सुनाई दी और उसी के साथ अनुराग की नींद टूटी। वो अचानक उठकर बैठ गया, दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। कुछ सेकंड लगे उसे समझने में कि वह कहाँ है, अपने कमरे में, अपने घर में। लेकिन आज का दिन सामान्य नहीं था, आज कुछ बदलने वाला था। रात भर उसे ठीक से नींद नहीं आई थी, बार बार वही बातें दिमाग में घूमती रहीं। मितेश अंकल की बातें, माता पिता की सच्चाई, राक्षस और रक्षक बनने का रास्ता। उसने सिर झटक कर खुद को वर्तमान में वापस लाया। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन क्षितिज पर हल्की सुनहरी रेखा दिखाई देने लगी थी। अनुराग बिस्तर से उतरा और धीरे धीरे खिड़की तक गया। बाहर सड़क लगभग खाली थी, सब कुछ शांत, लेकिन उस शांति के भीतर एक अजीब सा तनाव छिपा हुआ था, जैसे तूफान आने से पहले की हवा। वो कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहा, फिर अचानक थक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी सुबह, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। दिल ने अनजाने में चेतावनी दी। दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी मजबूत। अनुराग दरवाजे की ओर बढ़ा, हर कदम के साथ उसकी सतर्कता बढ़ती जा रही थी, जैसे शरीर खुद समझ रहा हो कि यह साधारण मुलाकात नहीं है। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, एक सेकंड रुका और फिर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर जो व्यक्ति खड़ा था, उसे देखकर अनुराग अनायास ही सीधा खड़ा हो गया। लगभग 6 फीट लंबा, चौड़े कंधे, गहरे हरे रंग की परफेक्टली प्रेस्ड वर्दी, छाती पर चमकते बैज और चेहरे पर ऐसी कठोरता जैसे पत्थर में तराशी गई हो। उसकी आंखें बेहद शांत थीं, लेकिन वह शांति खतरनाक थी। वह आदमी उन लोगों में से था जिनकी उपस्थिति ही अनुशासन पैदा कर देती है। अनुराग, उसकी आवाज भारी और नियंत्रित थी। जी, मैं मेजर अमित हूं, नाम सुनते ही अनुराग के भीतर कुछ कोया था। यह कोई साधारण सैन्य अधिकारी नहीं था, यह स्पष्ट था। मेजर अमित ने जेब से एक छोटा सा धातु कार्ड निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। कार्ड पर उभरा हुआ चिन्ह था, एक ढाल जिसके बीचों बीच अग्नि की लपट और उसके पीछे दो तलवारें क्रॉस की हुई। नीचे लिखा था, रक्षक कमान। अनुराग की सांस अनायास गहरी हो गई। तो ये सच था, सब कुछ सच। हमें अंदर आने दोगे, मेजर ने पूछा। ओह जी, बिल्कुल, अनुराग एक तरफ हट गया। मेजर अंदर आए, उनके कदम भारी नहीं थे, लेकिन हर कदम नपातुला था, जैसे जमीन भी उन्हें महसूस कर रही हो। उन्होंने घर के भीतर एक तेज नजर दौड़ाई, वो नजर निरीक्षण कर रही थी। आदत थी या प्रशिक्षण, तुम अकेले रहते हो, उन्होंने पूछा। जी हम जानते हैं, ये सुनकर अनुराग थोड़ा चौंका। मेजर ने उसकी ओर देखा और पहली बार उनके चेहरे पर हल्की सी नरमी आई। डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम रक्षक अकादमी के उम्मीदवार हो तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पहले से पता होता है। अनुराग का गला सूख गया। तो वे उसे देख रहे थे, कब से? क्यों, जैसे मेजर ने उसके मन की बात पढ़ ली हो, उन्होंने कहा। निगरानी सुरक्षा के लिए होती है, नियंत्रण के लिए नहीं। कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर मेजर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, तुम्हारा आवेदन स्वीकृत हो चुका है। दिल ने एक जोरदार धड़कन ली। क्या सच? हाँ, और सिर्फ स्वीकृत ही नहीं, तुम्हें विशेष सूची में रखा गया है। विशेष? मेजर ने जवाब देने से पहले उसे कुछ क्षण देखा। उनकी आंखें जैसे उसके भीतर झांक रही थीं। तुम्हारे माता पिता असाधारण रक्षक थे। अनुराग की उंगलियां अनायास कस गईं। उनका रिकॉर्ड आज भी अकादमी में पढ़ाया जाता है। सीने के भीतर कुछ गर्म सा उठा, गर्व, दर्द, दोनों। लेकिन मेजर की आवाज थोड़ी गंभीर हुई, उनकी विरासत तुम्हें कोई विशेष अधिकार नहीं देती। अनुराग सीधा खड़ा हो गया। रक्षक बनने के लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारी इच्छा शक्ति। उसने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं। मेजर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? अनुराग चुप रहा। इसका मतलब है तुम्हारी पुरानी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। कमरे की हवा जैसे थोड़ी भारी हो गई। दोस्त कम होंगे, दुश्मन ज्यादा, आराम कम मिलेगा, दर्द ज्यादा, और एक दिन तुम्हें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें देखकर अनुभवी योद्धा भी डर जाते हैं। अनुराग की आंखें नहीं झपकी। मेजर ने अगला वाक्य धीरे लेकिन बेहद स्पष्ट कहा, और शायद तुम वापस कभी सामान्य जीवन में लौट न सको। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर भी जाना चाहते हो? अनुराग ने बिना एक सेकंड गंवाए कहा, हाँ, कारण? अब उसके भीतर की आग शब्द बनकर बाहर आई, क्योंकि मैं भागना नहीं चाहता। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें कंपन नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे माता पिता के साथ क्या हुआ। सांस गहरी, और अगर इस दुनिया में सचमुच ऐसे राक्षस हैं तो मैं इतना मजबूत बनना चाहता हूं कि कोई और बच्चा मेरी तरह अकेला ना हो। कमरे में चुप्पी फैल गई। ये चुप्पी खाली नहीं थी, ये स्वीकृति की थी। मेजर अमित की आंखों में पहली बार स्पष्ट संतोष चमका। अच्छा जवाब। उन्होंने घड़ी देखी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, वाहन बाहर है। इतनी जल्दी? अनुराग ने चारों ओर देखा। ये घर, दीवारें, तस्वीरें, खामोशी, यही उसकी पूरी दुनिया थी, और अब वह इसे छोड़ने वाला था। क्या मैं 2 मिनट ले सकता हूं? उसने पूछा। मेजर ने सिर हिलाया। अनुराग अपने कमरे में गया। बैग पहले से तैयार था, जैसे उसका मन रात में ही फैसला कर चुका था। उसने उसे उठाया, फिर उसकी नजर मेज पर रखी एक तस्वीर पर गई। माँ और पापा, मुस्कुराते हुए उसने तस्वीर उठाई, उंगलियां हल्के से कांपी। मैं लौटूंगा, उसने मन ही मन कहा, लेकिन तब पहले जैसा नहीं रहूंगा। उसने तस्वीर वापस रख दी। नहीं, उसे अतीत को धोकर नहीं, उससे शक्ति लेकर आगे बढ़ना था। वो मुड़ा और कमरे से बाहर आ गया। मेजर दरवाजे के पास खड़े थे। उन्होंने बैग पर एक नजर डाली और बस इतना कहा, अच्छा है, रक्षक हल्का सफर करते हैं। दोनों बाहर निकले। घर का दरवाजा बंद करते वक्त अनुराग एक पल के लिए थिथका। क्लिक। आवाज छोटी थी लेकिन उस आवाज ने उसकी पुरानी जिंदगी पर अंतिम रेखा खींच दी। बाहर काली बुलेट प्रूफ दिखने वाली एक लंबी SUV खड़ी थी। इंजन चालू था। दरवाजा खुला। अनुराग पीछे बैठ गया, मेजर सामने। वाहन धीरे धीरे चल पड़ा। जैसे ही घर नजरों से ओझल हुआ, अनुराग ने महसूस किया डर था, हाँ, लेकिन उससे बड़ा एक अजीब सा उत्साह था अनजाने की ओर बढ़ने का। कुछ देर बाद मेजर बोले, एक सलाह दूं? जी। अकादमी में 2 तरह के छात्र आते हैं, पहले जो शक्ति चाहते हैं, दूसरे जो कारण लेकर आते हैं। उन्होंने शीशे में उसकी आंखों में देखा। दूसरी श्रेणी वाले ज्यादा दूर जाते हैं। SUV शहर की सीमा पार कर चुकी थी। आगे धुंध फैली थी और उस धुंध के पार उसका नया जीवन इंतजार कर रहा था। अनुराग ने मुट्ठी कस ली। दिल में एक ही वाक्य गूंज रहा था, अब मैं शिकार नहीं बनूंगा, अब मैं रक्षक बनूंगा।